ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगल ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज श्रील प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय शिष्य हिज ग्रेस जयानंद प्रभु, उनका तिरुभाव दिवस है, तो उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, है ना। भक्तों के बारे में चर्चा करने से हमारा और बहुत जल्दी शुद्धिकरण होता है, है ना। क्योंकि जैसे भगवान भगवद गीता में अपने आदेश देते हैं, लेकिन उन आदेशों को किस तरह पालन किया जाए या किन्होंने उन आदेशों का पालन किया है, जिनको हम देखकर हमको भक्ति करने की एक स्फूर्ति मिले, भक्ति करने का उत्साह मिले, है ना, है ना। रोल मॉडल्स के इनको हम फॉलो करना चाहते हैं। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका जब हम जीवन देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि भक्ति करने का अर्थ क्या है, भक्ति को व्यवहारिक जीवन में लगाने का अर्थ क्या है, है ना। जैसे अर्जुन पूछते हैं भगवान से 14वें अध्याय में कि भगवान जो आपने प्रकृति के तीन गुणों को बताया है, हालांकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन इन जो तीन गुणों के परे हो जाता है उसके क्या लक्षण है, है ना। तो प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अर्जुन स्वयं जानना चाहते हैं कि वो किस गुण में है या इन प्रकृति के तीन गुणों से निकले हैं कि नहीं, और दूसरे आम लोगों को बता रहे हैं कि जो प्रकृति के तीन गुणों से निकल जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं, है ना। तो ये लक्षण पढ़ने के बाद और सुनने के बावजूद भी थोड़ा डाउट रहता है, संशय रहता है, है ना, कि मतलब कैसे इस स्थिति में पहुंचा जाए या कोई प्रैक्टिकली इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, है ना। तो जब हम भक्तों का आचरण देखते हैं, है ना, भक्तों का जीवन देखते हैं तो समझ में आता है कि हाँ हाँ यस, इसको बोलते हैं प्रकृति के तीन गुणों से निकलना। नहीं तो पहले तो क्या थ्योरी चल रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, है ना। इसीलिए महान आचार्यों के जीवन के बारे में पढ़ना, जैसे श्रील प्रभुपाद लीलामृत है, तो लीलामृत पढ़ते हैं तो एक उत्साह आता है कि यस प्रभुपाद ने इस तरह से प्रचार किया पाश्चात्य जगत में, है ना। प्रभुपाद बीमार हैं, है ना, हार्ट अटैक आ रहे हैं, इतने शिष्यों के साथ डीलिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, तो जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें उत्साह आता है कि यस मुझे भी कुछ करना चाहिए, कुछ तो मैं उनके जैसा कुछ कर पाऊँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो ऐसे जयानंद प्रभु का जो जीवन है उसको सुन के, है ना, हमको प्रेरणा मिलेगी कि हम भी कुछ कर पाएँ उनके जैसा, है ना। उनके जैसा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ अंश, है ना, कुछ पार्ट उनके जैसा कुछ कर सकते हैं, है ना। तो भक्तों के जीवन में क्या होता है, जैसे एक पुस्तक भागवत होती है और एक भक्त भागवत होता है। तो जो पुस्तक भागवत होती है उसमें आदेश दिए होते हैं ऐसे ऐसे करना, लेकिन भक्त भागवत जो होता है वो उस भागवत को क्या करता है, जीता है, है ना, उस भागवत को क्या जीवंत बना देता है, है ना। वो लिविंग भागवत है, वो खुद जी रहा है भागवत, उसके आचरण को देखकर हम पता कर सकते हैं कि भागवत में क्या लिखा है। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे महान भक्त होते हैं कि उनके जीवन से हम देख कर समझ जाएंगे कि भागवत में ये लिखा है, है ना। एक बार क्या हुआ कि श्रील सरस्वती ठाकुर एक कहीं यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बाद में उठे और उन्होंने चैलेंज किया कि आपने बोला है कि भक्ति तो स्वतंत्र होती है, अगर हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो भक्ति कर सकते हैं और भक्ति की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने के लिए तो कुछ ज्ञान चाहिए ना, शास्त्रों को पढ़ने के लिए तो काखा गागा ABCD तो कुछ पता होना चाहिए ना, तभी तो हम शास्त्रों को पढ़ पाएंगे। तो बेसिक नॉलेज चाहिए, उसके बाद ही हम शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, है ना। और आप भी बड़े इतने बड़े स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, तो आपने भी प्राइमरी एजुकेशन लिया है, उसके बाद ही तो आप शास्त्र पढ़ पाए, शास्त्रों के मर्म को जान पाए। बोले ऐसा नहीं है कि मैं शास्त्रों को पढ़कर शास्त्रों को जान पाया। मैं जो मेरे गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके मैंने चरित्र को देखा, उनके जीवन को देखा, उनके जीवन को देखकर मैं समझ गया कि शास्त्रों में ये लिखा है, कि शास्त्रों में ये है। तो किसी कोई अनपढ़ है उसको कोई अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं है, है ना, ये काखा का ABCD देखने कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो महान भक्तों के चरित्र को ही देख लेंगे, उससे समझ जाएंगे कि ये वास्तव में इसको बोलते हैं भक्ति करना, इस ये इनका जीवन जो है वो शास्त्रों का जीवंत रूप है, है ना। इसीलिए हम जो महान भक्त हैं उनके जो जीवन है, उनकी जो लीला है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो जयानंद प्रभु जो भक्तों का भक्ति में आने से पहले जो जीवन होता है वो सामान्यतः उसकी चर्चा नहीं की जाती, है ना, और चर्चा करनी भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन जो महान भक्त हैं उनके भक्ति में आने से पहले उनका जो जीवन था उसके बारे में चर्चा क्यों करते हैं, इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि जो श्रील प्रभुपाद हैं उन्होंने उनकी जो कृपा है कितनी अधिक है, है ना, कितने पाप जैसे पापी तापी जता छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई। तो जब हम जगाई और मधाई के बारे में चर्चा करते हैं तो क्या किसका स्मरण आता है, नित्यानंद प्रभु का, कि नित्यानंद प्रभु ने ऐसे जगाई मधाई के जैसे लोगों का भी उद्धार किया, है ना। तो जो भक्ति में आने से पहले का जो जीवन है उसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं कि कैसे शुद्ध भक्तों ने अलग अलग लोगों को, अलग अलग जो बैकग्राउंड के लोगों थे लोगों को वहाँ से निकाला, है ना, और भक्ति में लेके आया, इसीलिए चर्चा की जाती। तो उनका जो पहले नाम था जिम कोर, है ना, अमेरिकन बैकग्राउंड था उनका, है ना, बहुत ही शरीर से बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत बुद्धिमान थे, है ना, हैंडसम थे, देख सुंदर थे, है ना, और अपर मिडिल क्लास में उनका जन्म हुआ था और एक अच्छे स्टूडेंट थे। तो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और उनको अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही सक्सेस थे, सफल थे, लेकिन अपने आप में बहुत ही खिन्नता का महसूस करते थे, है ना, अनसेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई और खालीपन कि मुझे डिग्री मिल गई है, है ना, लेकिन अपने आप में क्या है कि एक खालीपन, है ना, खिन्नता कि जीवन में, इस जीवन में रखा क्या है, है ना। और जब चारों तरफ देखते थे कि कैसे लोग केवल पैसे के लिए, डिग्री के लिए, है ना, या फिर शोहरत के लिए भाग रहे हैं और एक दिन मर जाएंगे, तो वो ऐसे जीवन से, ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते थे वो, है ना। लेकिन करें क्या, तो अभी तक कोई आध्यात्मिक गुरु उनको मिला नहीं था, है ना। तो जिम जो थे, जिम कोर, है ना, तो जो अपर मिडिल क्लास था उसमें फिट नहीं होते थे वो, क्योंकि आप देखेंगे जनरली ऐसे अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास होते हैं वहाँ फॉर्मेलिटीज बहुत चलती है, है ना, हाँ थैंक यू, अच्छा बैठिए, मतलब फॉर्मल, ऐसे कोई इंटीमेट रिलेशन नहीं होता लोगों में, फॉर्मेलिटीज, है ना, औपचारिकताएँ बहुत चलती है। तो वो औपचारिकता का जीवन जीना नहीं चाहते थे, ऐसे औपचारिक लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते थे, है ना। तो और डिग्री का यूज करते, कहीं वो जाके जॉब करते तो वहाँ भी वो ऐसे माहौल मिलता, तो उन्होंने क्या किया, टैक्सी चलाना चालू कर दिया, है ना, कैब ड्राइवर बन गए सैन फ्रांसिस्को में, है ना। और जब उन्होंने देखा कि ऐसे जब उनके जीवन में खालीपन इस तरह से उनको लग रहा था, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन डिप्रेशन भी हुआ, और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी सुसाइड करने की भी टेंडेंसी आती है, तो वो भी कभी कभी सोचने लगे। तो 1967 में उनको एक आर्टिकल मिला छोटा सा, और उसमें लिखा हुआ था कि एक कोई भारतीय स्वामी है, इंडियन स्वामी है, जो यहाँ अमेरिका में आए हैं, और उनका वो ऐसे जो भगवान के जो पवित्र नाम है उनका कीर्तन करते हैं और भगवद गीता से प्रवचन करते हैं, तो जो भी सुनना चाहते हैं, कीर्तन अटेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो आ सकते हैं, है ना। कोई बे एरिया था एक, है ना, तो वहाँ पर वो उनको एक आशा की किरण जगी कि अभी कुछ हो सकता, कुछ मुझे मिल जाए जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना। और उन्होंने निश्चित किया कि मैं जो भारतीय जो स्वामी है, इंडियन स्वामी है, उनका प्रवचन अटेंड करने जाऊँगा, है ना। तो भगवद गीता में बताया गया कि चार तरह के लोग भगवान की शरण में जाते हैं, कौन कौन, चतुर्विदा भजन्ते माम, जना सुकृतनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी चा भरतस। चार तरह के कौन कौन से लोग हैं, हाँ, जो दुखी हैं, है ना, और कुछ नीड है उनको, कुछ पैसे की जरूरत है, कोई जिज्ञासु है और ज्ञानी है, है ना। तो जनन तो एक तरह से जिज्ञासु, यानी क्या है जीवन, ऐसे ही बस बड़े होना, पैसे कमाना, है ना, बच्चे पैदा करना, एक दिन मर जाना, बस यही जीवन है कि इसके अलावा ही कुछ जीवन है। तो जिज्ञासु, इनक्विजिटिव, है ना। तो वहाँ पर जाते हैं, और फिर जैसे वो शिल प्रभुपात, है ना, उनसे मिलते हैं तो बहुत अटैच्ड हो जाते हैं उनसे, है ना। उनके इस्कॉन की स्थापना हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, एक साल भी नहीं हुआ था उस समय, तो एक सेंटर था न्यूयॉर्क में और सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हो रहा था, है ना, भक्त लोग धीरे धीरे जुड़ रहे थे। तो वहाँ पर जो जिम है, जिम कोर, वहाँ पर सुबह रोज भागवतम क्लास अटेंड करने जाते थे जो शिल प्रभुपाद लेते थे, जब प्रभुपाद वहाँ पर थे सैन फ्रांसिस्को में, तो रोज वहाँ पर भागवतम क्लास अटेंड करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि भागवतम क्लास में केवल वही अकेले होते थे सुनने वाले, और कोई गेस्ट नहीं होता था, या और दूसरे डिवोटीज नहीं होते थे, कुछ सेवा रहती होंगी या कोई गेस्ट कोई आ नहीं रहा है, तो वह अकेले ही बैठ के सुनते थे और प्रभुपाद अकेले ही उनको प्रवचन देते थे, है ना। ऐसा नहीं कि एक जन है तो उनको क्या बताना, है ना। और ऐसे प्रभुपाद से वो रोज सुनने आते थे, और प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से कुकिंग करते थे, उनको प्रसाद देते थे, है ना। और प्रभुपाद ने कुछ समय के बाद, तो हम देख सकते हैं कि उनको सुनना बहुत अच्छा पसंद था, रोज़ सुनने आते थे, तो एक डिसाइपल की क्या क्वालिटी, उसको सुनना अच्छा लगता है, जो अच्छी तरह श्रवण करेगा वो अच्छी तरह से कीर्तन कर पाएगा, जो अच्छी तरह से श्रवण नहीं करेगा वो अच्छी तरह से कीर्तन भी नहीं कर पाएगा। कीर्तन मतलब प्रचार, और दूसरा चैंटिंग, दोनों हो गए, या कीर्तन मतलब भगवान का गुणगान करना, सेवा नहीं कर पाएगा, सेवा के माध्यम से ही भगवान का गुणगान करते हैं, तो अच्छी तरह से श्रवण करेगा तो अच्छी तरह से कीर्तन करेगा। अब बाद में प्रभुपाद ने ऐसे प्रभुपाद प्रसाद भी खिलाते थे, तो वो ऐसे जनन प्रभु बताते हैं कि मैं प्रसाद खा खा के भक्त बन गया था, प्रभुपाद ने मुझे इतना प्रसाद खिलाया बार बार, उस समय भक्त बन गया, है ना। तो बहुत सारे डिवोटीज ऐसे ही बने थे उस समय, है ना, प्रसाद खा खा के, हम में से भी अधिकतर लोग प्रसाद खा के ही भक्त बने हैं, है ना। प्रसाद, प्रसादम खाना और सुनना। और प्रभुपाद ने उनको फिर दीक्षा प्रदान किया, उनका नाम रखा जयानंद दास, है ना। तो चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच, है ना। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से उसे भक्ति लता बीच प्राप्त, कई ब्रह्मांडों में कई समय में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और एक जन्म में गुरु को गुरु पादाश्रय, इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि 64 अंगों में पहला अंग क्या होता है, गुरु पादाश्रय, गुरु का आश्रय ग्रहण करना, है ना, शेल्टर। उसके बाद श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, पहले आश्रय ग्रहण होता है, उसके बाद फिर दीक्षा होती है, फिर विश्वम्भ्रेण गुरु सेवा, फिर गुरु की इंटीमेटली सेवा की जाती है ना। तो ऐसे अलग अलग चरण हैं, और फिर जैनंद प्रभु का दीक्षा होने के बाद है ना, वो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, विधियाँ हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट थे, है ना। प्रतिदिन वो सुबह 4 बजे से पहले उठ जाते थे, मंगला आरती अटेंड करते थे, जप करते थे, रीडिंग करते थे, फिर कुकिंग करते थे, है ना। और फिर कुकिंग करने के बाद निकल जाते थे। उस समय क्या होता था, भक्त लोग ऐसे कुछ भक्त जो बाहर कार्य करते थे, कुछ अगरबत्तियाँ सेल करते थे, है ना, इंसेंस, तो अगरबत्तियाँ सेल करने चले जाते थे, है ना। और प्रतिदिन का उनका यही शेड्यूल होता था, सुबह 4 बजे से पहले उठना, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, और उसके बाद अगरबत्ती सेल करने चले, और उससे जो भी लक्ष्मी आता था वो पूरा प्रभुपाद जी को दे देते थे, है ना। और जैनपुर प्रसादम जो लेते थे, है ना, प्रसाद हम बोलते ऑनरिंग प्रसादम, एक तो खाना और उसका सम्मान करना, है ना। तो प्रसाद भी क्या है, एक भगवान का रूप है, है ना? तो भगवान की जैसे विग्रहों की पूजा की जाती है, उसी तरह प्रसाद की भी पूजा करते थे वो। तो जब प्रसाद ऑनर करते थे, तो प्रसाद लेते समय अगर कुछ भी आसपास जमीन पर गिर गया तो उसको वो तुरंत ही उठा के चाट लेते थे, कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते थे, है ना। और उनको कुकिंग करना, फिर खाना ऑफर करना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही अच्छा लगता था, है ना। जो हम देखते हैं अपने जीवन में, जो जिस तरीके से भक्ति में आता है उसको वो प्रचार करना अच्छा लगता है ना। कोई फिलॉसफी सुन के आता है तो उसको फिलॉसफी बताना बहुत अच्छा लगता है, कोई प्रसाद खा के आता है तो उसे प्रसाद बना के दूसरों को खिलाना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही वो कुकिंग करना, ऑफर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत अच्छा लगता था हमको, है ना। और बोलते थे कि प्रसादम को अगर बहुत ही प्रेम से और पूरा भक्ति भावना से बनाया जाए तो तुरंत ही वो व्यक्ति खा के तुरंत भक्त बन जाएगा, है ना। और फिर उनका अटैचमेंट था भगवान के नाम से, है ना, जब से बहुत अटैचमेंट था उनका। और हमेशा वो ऐसे ऐसा बताया था कि उस समय प्रभुपाद के समय पर कि लोग जैसे बैठते थे प्रसाद लेने बैठे और प्रसाद आने में थोड़ा टाइम है तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू किया, चरणामृत ले रहे हैं तो लाइन लगा हुआ है चरणामृत लेने का, तो खाली समय तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, जहाँ भी खाली समय मिलता था बाथरूम में गए हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू किया, है ना। कपड़े समेट रहे हैं, धोती ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जप, जब भी समय मिलता था नहा रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे जैनल प्रभु भी जब भी खाली टाइम मिलता था हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, ऐसे जप किया जा रहा, है ना। और कम से कम और कीर्तन में भी बहुत जोर से नाचते थे, है ना, बहुत। इसलिए प्रभुपाद के जो शिष्य थे जो वेस्टर्न डिसाइपल थे, प्रभुपाद उनको इंडिया लेके आए थे तो सूरत में बहुत बड़ा वो हुआ था, प्रोसेसन हुआ था, तो उसमें लीलामृत में लिखा है डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, है ना, नृत्य करने वाले सफ़ेद हाथी। तो ऐसे जैनंद प्रभु क्या बहुत कीर्तन बहुत नाचते थे, है ना। भक्ति रसा सिंधु में लिखा है कि डीटीज के सामने जब कीर्तन हो रहा हो तो नाचना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं कि स्पेस आउट की तरह एक कोने में खड़े हैं और खींचना पड़ रहा है फिर भी नहीं, 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 ऐसा नहीं, खूब उत्साह आए नहीं आए, एक्सटेंसी आए नहीं आए, बस नाचो, और नाचने से अपने आप ही उत्साह आ जाएगा, है ना। तो ऐसे और कभी कभी बहुत लंबी सेवा होती थी, 10 घंटे 12 घंटे की सेवा, सब बाकी भक्त थे एकदम थक जाते थे, है ना, थक के ऐसा लगता है कि बस अब रूम में जाके रेस्ट करेंगे, लेकिन अगर कीर्तन चल रहा है तो जैनंद पे वहाँ जाते थे, कीर्तन में जंप लगाते थे और जोर से नाचना चालू करते थे, है ना। और जब जप करते थे तो उनका जो जप होता था इतना केंद्रित होता था, फोकस्ड, इतना इंटेंस होता था कि जो महामंत्र का एक एक अक्षर है, है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से वो जप करते थे, ध्यान से उसको सुनते थे, है ना। तो उनका जो भगवान का नाम था उससे बहुत ही ना अटैचमेंट था, है ना। और रूप गोस्वामी बोलते भी हैं अपने एक जगह कि भगवान आपके नाम से मेरा इतना आसक्ति हो जाए जितना एक प्रेमिका प्रेमिका से होता है, है ना, प्रेमी प्रेमिका का अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से आसक्ति होता है, ऐसे ही मेरा आपका जो आपके हरि नाम होली नेम है, पवित्र नाम है, उससे कब अटैचमेंट होगा, है ना। फिर उनके कुछ गुण हैं, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। तो जनरली वो मूवमेंट में काफ़ी समय उनको हो गया था, काफ़ी साल हो गए थे, और शुरुआत से थे 1967, मतलब इस्कॉन की स्थापना हुई उसके कुछ समय से ही वो भक्ति में आ गए थे, प्रभुपाद के शिष्य बन। तो प्रभुपाद की जो वरिष्ठ शिष्य हैं उनमें उनको गिना जाता था, है ना। लेकिन कोई भी नया भक्त आता था, नया भक्त कोई ज्वाइन करता था, उससे कभी भी सेवा नहीं लेते थे, है ना। और कोई अगर उनकी बढ़ाई करे तो उनको बहुत ही नफरत होती थी कि अगर कोई उनकी बढ़ाई कर रहा। और भक्त लोग ऐसा बोलते थे कि अगर कोई जयानंद प्रभु का संग चाहता है या जयानंद प्रभु के साथ में रहना चाहता है तो उसकी एक उसको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी भी उनका गुणगान नहीं करना होगा। अगर कभी भी उनका गुणगान किया आपने तो जयानंद प्रभु उसको छोड़ देंगे, है ना। तो भक्त लोग बहुत ध्यान में रखते थे, कभी उनको प्रेज नहीं करते थे, कभी बढ़ाई नहीं करते थे। और जो उनका प्रेज नहीं करता था, बढ़ाई नहीं करता था, उसी के साथ जयानंद प्रभु रहते थे, है ना। और सीनियर होने के बावजूद भी जो भी नए भक्त हैं उनकी सेवा करना, है ना, उनको कुछ ज़रूरत है, कोई भी भक्त, कोई भी नया भक्त मंदिर में नया आया है तो, है ना, उसको बेडिंग देना, मच्छरदानी देना, सब उसकी व्यवस्था करना। सीनियर होने के बावजूद भी सब वो ध्यान रखते थे, है ना। और कोई अगर मंदिर में ऐसे आया है, है ना, और कुछ सेवा करना चाहता है तो उसको जयानंद प्रभु के साथ भेज दिया जाता था, क्योंकि जयानंद प्रभु सेवा में बहुत उत्साही रहते थे। तो पूरे हफ्ते भर का जो कचरा इकट्ठा होता था वो तो मंदिर के एक पीछे रख दिया जाता था, और बाद में जयानंद प्रभु उस कचरे को उठाकर उस जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें डाल देते थे। तो एक नया कोई लड़का आया वहाँ पर और वो सेवा करना चाहता था तो उसको जयानंद प्रभु के साथ भेज दिया। अब उसने जयानंद प्रभु के साथ में कई घंटे सेवा किया कचरे फेंकने का, और वो बहुत खुश हुआ, उसे बहुत अच्छा लगा। बोले मंदिर में जो कचरा फेंकने वाले हैं वो इतने खुश हैं तो मंदिर के बाकी लोग कितने खुश हो। अब वो टेंपल प्रेसिडेंट थे वो जयानंद प्रभु उस समय, है ना। तो वो एकदम आकर्षित हो गया और उसने फिर मंदिर ज्वाइन कर लिया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक है, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिसुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कौन हरिनाम 24 घंटे ले सकता है जिसमें चार क्वालिटीज, है ना। तृणादपि सुनी चेना, जो तृण से भी ज्यादा अपने आप को सुनी चेना, नीच नहीं, सुनी चेना, पूरी तरह से नीच, है ना। तरोरपि सहिसुना, जो पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु। अमानिना मान देना, खुद की मान की इच्छा नहीं और दूसरों को मान देने के लिए हमेशा तैयार है। कीर्तनिया सदा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त है वो हमेशा कीर्तन कर सकता। तो जयानंद प्रभु में चारों क्वालिटीज थी, है ना। ये केवल श्लोक क्या है, याद करने के लिए नहीं है, अभी आप लोगों को होमवर्क है ना याद करने का, केवल याद करने के लिए नहीं है। ये क्वालिटी डेवलप करना बहुत मुश्किल है, खासकर ये क्वालिटी अमानिना मान देना, कि खुद के मान की इच्छा नहीं होना और दूसरों को मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना। ये क्वालिटी तो बहुत ही मुश्किल होती है ना। ये क्वालिटी आ गई तो कीर्तनिया सदा हरि। फिर सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड। तो जयानंद प्रभु का जो ऑलमोस्ट सारे सेवा में एक्सपर्ट थे, कुकिंग करना है, प्रीचिंग करना है, डीटी वर्शिप करना है, लोगों से संबंध बनाना है, संकीर्तन में जाना है, अगरबत्तियां बेचना है, कंस्ट्रक्शन देखना है, हर हर चीज में जयानंद प्रभु एक्सपर्ट थे, दक्ष थे, है ना। जैसे भगवान बारहवें अध्याय बताते हैं कि भक्तों की अलग अलग क्वालिटीज, तो एक क्वालिटी क्या बताते हैं, दक्ष, एक्सपर्ट, है ना, हर सेवा में वो एक्सपर्ट होगा। और बहुत ही बिना थके हमेशा सेवा करते रहते थे, है ना। मंदिर में सबसे पहले उठते थे और सबसे लास्ट में सोते थे, है ना। और फूल इकट्ठा करना, है ना, बर्तन धोना, किचन क्लीन करना, कचरा फेंकना, हमेशा उसके लिए तैयार रहते थे। ऐसी सेवा जो दिखती नहीं है, जैसे जो ऐसी सेवा जो दिखेंगी नहीं, है ना। और उनको कीर्तन लीड करना है या लेक्चर देना है, है ना, या डीटी वर्शिप में ऐसा कुछ फेस्टिवल के समय कुछ डीटी वर्शिप करना है तो उसमें हमेशा पीछे रहते थे। ऐसी सेवा लेते थे जो पब्लिक की आंखों में या मंदिर की बाकी भक्तों की आंखों में दिखे ही नहीं, तो हमेशा पीछे रहते थे। पीछे रहने का मतलब नहीं वैसे पीछे, ऐसे सेवा में हमेशा सेवा करने में आगे रहते थे, लेकिन लोगों की दृष्टि में पीछे रहते थे, है ना। और जो भी उनको सेवा दी जाती थी कि बहुत ही पक्के से करते थे, बहुत ही डिटेल में करते थे। जो भी सेवा मिली है उसको एकदम पक्का अच्छी तरह से करना, ऐसे नहीं बस किसी तरह कर दिया, है ना। ऐसे कई बर्तन धोना है तो कभी कभी थके तो जल्दी जल्दी धोआ और साइड किया। जो भी किया है एकदम पक्का, कुछ भी उसमें कुछ भी शेष नहीं रह जाना चाहिए कि दूसरे लोग आके हमारे लिए फिर करें, है ना। और अगर वो बहुत ज़्यादा थके हुए भी हैं तो भी कुछ भी सेवा आती थी हमेशा उसके लिए तैयार रहते थे, है ना। और सेवा इतनी बढ़ जाती थी कभी कभी दिन में भी वो सोते नहीं थे, है ना। और कभी कभी ऐसे प्रसाद बहुत ज़्यादा बच गया, है ना, प्रसाद ऐसे रात में कभी कभी प्रसाद बच जाता है ना, तो क्या करते थे कि दो तीन भक्तों की टीम इकट्ठा करते थे और कहीं चले जाते कहीं दूसरी जगह। जैसे हम यहाँ पे कभी कभी करते हैं सब्जी मंडी जाते हैं, है ना, और तीन चार लोगों का इकट्ठा किया और ऐसे हिप्पी वाले एरिया में चले जाते थे, वहाँ पे संकीर्तन करते थे और सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे रात में 10 बजे 11 बजे, है ना। और भक्तों को फिर लेके आते थे और फिर सब रेस्ट करने जाते थे, है ना। तो पूरा फायर्ड अप थे, है ना, पूरा जोश था कि यस सेवा करना है। और आगे चल के राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी चालू हुआ, राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, बहुत सारी बस थी उसमें, तो पूरे अमेरिका में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे वो। तो वो ट्रैवलिंग संकीर्तन के क्या बने, वो ड्राइवर बने। और उस ट्रैवलिंग संकीर्तन में बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी थे जिनकी उम्र उनसे काफ़ी कम थी, मतलब उम्र में बड़े थे और भक्ति में भी काफ़ी उन्नत थे, लेकिन फिर भी उस ट्रैवलिंग संकीर्तन के ड्राइवर बनना उन्होंने स्वीकार किया, है ना। एक्चुअली प्रभुपाद भी एक जगह बोले, एक कोई टेंपल प्रेसिडेंट थे किसी मंदिर के, तो वो टेंपल प्रेसिडेंट उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के ड्राइवर बन गए, तो प्रभुपाद उनसे बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि टेंपल प्रेसिडेंट का जॉब क्या है कि टेंपल को यहाँ संभालना, लोग आएंगे और भक्ति सीखेंगे, लेकिन कलयुग में लोग टेंपल में नहीं आते हैं, इसलिए टेंपल को लोगों के पास जाना पड़ता है। तो ये जो बस है संकीर्तन बस है वो क्या है, चलता फिरता क्या है, टेंपल है, तो उसको चलाने वाला कोई ड्राइवर चाहिए। तो आप वो टेंपल प्रेसिडेंट छोड़कर आप अभी क्या है गाड़ी चला रहे हैं, तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि आप हर जगह टेंपल ले जा रहे हैं, हर घर में टेंपल ले जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वो ड्राइवर बने। और जैसे भगवान आदि पुराण में बोलते हैं कि अर्जुन को बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा वास्तव में भक्त नहीं है, जो मेरा भक्तों का भक्त है वो मेरा वास्तव में भक्त है, है ना। तो इस चीज को भी जैनपुर ने पर्सोनिफाई किया, है ना, कि जो भी भक्त आते थे उनकी सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, बहुत जो भी गेस्ट आया है या नया विजिटर आया या ऑलरेडी जो भक्त है उनकी सेवा के लिए हमेशा वो आतुर रहते थे, है ना। और जेन्युइन ह्यूमिलिटी रहती थी, आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी नहीं, है ना, कृत्रिम रूप से विनम्र नहीं, वास्तव में विनम्रता, है ना। कोई भी नया भक्त है उसको किसी भी तरह का कोई भी समस्या है, उसको कोई भी समस्या आता था वो सोचता था हाँ जैनन प्रभु के पास जाऊँ, जैनन प्रभु के पास में जाऊँगा तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। ऐसा होता ना कि मंदिर में ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं तो हमें कुछ समस्या होती है, कुछ दिक्कत होती है, तो हमें लगता है कि ये भक्त के पास जाएंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे जो नए भक्त होते थे कुछ भी समस्या है दिमाग में कौन स्मरण कौन आता था, जैनन प्रभु, इनके पास जाएंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। और वो अपने आप को एक्सटेंड भी करते थे, है ना, नहीं कि अपना नहीं कि अपना एक कंफर्ट जोन है, है ना, अपनी एक सेवा है, अपनी एक साधना है, अपना एक प्रचार है, बस हो गया। क्योंकि क्या प्रचार करना होता है तो अपने आप को एक्सटेंड करने की जरूरत होती है, हो सकता है अपनी नींद भी छोड़ना पड़े, अपना प्रसाद भी छोड़ना पड़े। अपने आप को एक्सटेंड नहीं करेंगे तो फिर क्या है प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जैन प्रभु अपने आप को बहुत एक्सटेंड करते थे और फिर भक्त लोग भी उनके पास आते थे। फिर उनका एक गुण था जैन प्रभु का, जो दूसरों में दोष निकालना की जो प्रवृत्ति है उससे पूरी तरह से वो मुक्त थे, है ना। फ्रीडम फ्रॉम फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग की जो टेंडेंसी था उससे पूरी तरह से मुक्त थे, है ना। किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करते थे, है ना। अगर किसी की कुछ मिस्टेक होती थी, सेवा में कुछ समस्या करता था, तो वो इस तरह से उसके साथ डील करते थे कि उसको सामने वाले को समझ में भी आ जाए और उसको भी करेक्ट भी कर दे, है ना। हम जब देखते हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग से हमें दूर होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत चल रहा है तो गलत चलने दो, ऐसा नहीं। उसको इस तरह से डील करना है कि वो सामने वाला व्यक्ति समझ भी जाए और करेक्ट भी हो जाए, और अननेसेसरी फिर वो होता है चुगली करना, इधर की बात इधर, उधर की बात उधर, ये सब नहीं चले। तो जो भी कभी भी किसी से हार्श बिहेव करना या किसी को अनावश्यक रूप से डांटना, इस तरह से वो कुछ भी उनका स्वभाव नहीं था, है ना। और सबको इनकरेज करते थे सेवा के लिए, यस बहुत अच्छा, किसी कुछ गलती भी हो तो कोई बात नहीं, उसको इनकरेज उत्साह देना, कोई बात नहीं आप सेवा कीजिए। और साथ ही साथ वो जो अच्छे लोग होते थे, जो सेवा में अच्छे होते थे, उनको अपने नज़दीक रखते थे, है ना। मतलब सबको उत्साह देते थे लेकिन अपने पास में उन लोगों को रखते थे जो सेवा में अच्छे हैं, दक्ष हैं, तो सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे, है ना। तो एक मैनेजर का अच्छा ही गुण होता है कि वो सबको उत्साह देता है, सबको भक्ति की प्रेरणा देता है, लेकिन कुछ लोग उसके ज़्यादा करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेवा में अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि जो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है। जो हमेशा अपने आराम स्थिति में रखना चाहेगा तो वो फिर जो डिवोटी होंगे वो भी सोचेंगे कि इसको बोलेंगे तो ये पहले कतराएंगे, अरे यार इनको बोलेंगे तो 10 एक्सक्यूज देंगे कि ये हो गया, हम सोए नहीं थे रात में, मच्छर काट रहे थे, ये हो गया। लेकिन जो व्यक्ति को बोलेंगे और जो हमेशा तैयार है, तो कभी भी कुछ समस्या होगी तो उस भक्त का स्मरण आएगा, या इसको बोलूंगा तो ये कभी ना नहीं बोलेगा, है ना। तो भगवान के स्मरण में कौन आएगा? ऐसा भक्त आएगा जो हमेशा हमेशा रेडी है। भगवान भी सोचेंगे इसको बोलेंगे तो हमेशा तैयार है, है ना। तो भगवान के ऐसे भक्त बनना है, शुद्ध भक्तों के ऐसे भक्त बनना है कि उनके स्मरण में हम आए कि यस इसको बोलेंगे तो कभी पीछे नहीं हटेगा, हमेशा ये तैयार। और जो हमेशा सेवा से जी चुराएगा, है ना, अपना कंफर्ट देखेगा, तो उसको फिर फिक्स सेवा होती है उसकी, कि आपको इतनी फिक्स सेवा करना है, 20 मिनट करना है, 30 मिनट करना है, 1 घंटे करना। और जो हमेशा रेडी होती है उसकी फिक्स सेवा होती है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो उसको हमेशा उसी को याद किया जाता है। तो जैनपुर भी ऐसे थे, है ना, अपने हमेशा रेडी। फिर डियर टू एवरीवन, है ना, भक्तों को भी प्रिय थे वो, अभक्तों को भी प्रिय थे। ऐसे सट गोस्वामी, है ना, धीर अधीर दोनों को प्रिय है। तो उनका एक, जब रथ यात्रा होती थी तो रथ यात्रा में रूट की परमिशन लेना होता है, है ना, कि रथ यहाँ से जाएगा तो उस समय ट्रैफिक बंद रहेगा, पुलिस रहेगी। तो वहाँ पे एक स्त्री थी जो परमिशन देती थी, तो बहुत ही ज़्यादा वैसी थी, एकदम हार्श, है ना, दुर्व्यवहार करती थी भक्तों के साथ, है ना। तो एक साल क्या हुआ, भक्त लोग आए उससे परमिशन लेने के, हमें इस रूट का परमिशन चाहिए। तो वो जो स्त्री, उसने पूछा कि वो जयानंद कहाँ है, वो नहीं आया परमिशन लेने। तो भक्त लोग बोले कि जयानंद प्रभु तो अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो स्त्री भी रोने लगी वहाँ पर, है ना, स्त्री की आंखों में आंसू आ गए कि वो जयानंद प्रभु आते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो भक्त नहीं थी, अभक्त थी, भक्तों से भी ऐसी डील करती थी, लेकिन जयानंद प्रभु की जो प्योरिटी थी, शुद्धता थी, उससे इतनी आकर्षित थी वो कि वो जयानंद प्रभु नहीं आए, है ना। तो और भी जयानंद प्रभु के कुछ मित्र थे जो ऐसे शराब मित्र, मतलब भक्ति में आने से पहले मित्र थे। तो एक बार आए ऐसे शराब पी के आए, कपड़े गंदे थे, और आए, वो जयानंद कहाँ है, मेरा प्रिय मित्र, उसको बोलो उससे मिलना है। तो दोनों लोग उनसे प्रेम करते थे, भक्त भी अभक्त, है ना। और ऐसे और भी मित्र थे उनके, तो वो जयानंद प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, बोलते वेयर इज जॉनी आनंद. कहा है वो जॉनी आनंद, कहा है वो? मेरा बहुत ही अच्छा मित्र था, बहुत ही प्योर था वो, बहुत ही अच्छा था, है ना. और वो जो बात करता था फिलोसफी, वो मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि जयानंद ने उस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, इसका मतलब वो सही मूवमेंट, ये गारंटी. वो बोलता था वो मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि, लेकिन वो इस्कॉन में था इसलिए इस्कॉन सही है, उसको देख, क्योंकि वो जो भी करता था सही करता था. तो ऐसे लोग ऐसे भी उनकी बड़ाई करते थे, है ना. और जो भी ऐसे पिए हुए, है ना, शराबी या हिप्पी या ऐसे लोग आते थे, तो जैनन प्रभु उनको सेवा में लगा देते थे. एक बार क्या, वो जैनन प्रभु जो कार है उसको रिपेयर कर रहे थे, ट्रेवलिंग संकीर्तन बस, है ना. तो ऐसे मैकेनिक होते हैं ना, नीचे जाके करते हैं, तो उस समय उनका चेहरा नहीं दिखाई देता, पैर ही दिखाई देते, है ना. तो ऐसे रिपेयर कर रहे थे, तो रात का समय था 11-12 बजे का, तो ऐसे दो हिप्पी ऐसे जा रहे थे जोर जोर से आवाज ऐसे बात करते. तो जयानंद प्रभु ने उनको बुलाया कि आप थोड़ी मदद करेंगे. तो वो सोचे कहाँ से आवाज आई, तो देखा कि एक व्यक्ति ऐसे ट्रक के नीचे कुछ रिपेयर कर रहा है. तो उन्हें हिप्पियों को बुला लिया, ठीक है आप भी आ जाओ, आप भी रिपेयरिंग में लग जाओ. तो वो भी रिपेयरिंग करने लगे, और उन्हें रिपेयर करवाया, सेवा में लगा दिया, और बाद में प्रसाद दिया, बोले आप रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप किया करो, है ना. तो ऐसे वो उनका जो प्रीचिंग का स्टाइल था, ऐसे लोगों को इंगेज करना, है ना, हिप्पियों को भी उन्होंने इंगेज कर दिया. और रथ यात्रा के समय क्या होता था, जब रथ बनाते थे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हिप्पी और बहुत सारे अनकोऑपरेटिव लोग, है ना, अभक्त लोग वहाँ से गुजरते थे, तो उनको बुला लेते थे. अच्छा तो आप ये इसमें कील लगाओ, है ना, आप ये लकड़ी वहाँ से लेके आओ, आप ये साफ करो, और सब उनके साथ सेवा में लग जाते थे. उनकी ऐसी क्वालिटी थी कि कोई मना नहीं कर पाता था कि और सेवा में लग गए, है ना. और खुद अकेले ही 10-14 घंटे काम करते थे उस समय, रथ यात्रा जो बनाते थे. और जो भी उनके साथ कार्य करता था उनका गुणगान करते थे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा ऐसा. तो हिप्पी लोग भी वहाँ पर ऐसे बहुत ही उनको पसंद करते थे लोग, है ना. और सबको बहुत अच्छा लगता था उनके साथ काम करना, है ना, सेवा करना, हिप्पियों को, नए लोगों को, है ना, जो भी आते. वो जैनपुर कोई भी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो कार्ड बिल्डिंग कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भक्त सोच रहे हैं मैं कोई भी सेवा करूंगा लेकिन इनके साथ करूंगा सेवा. तो सबको बहुत अच्छा लगता था, है ना. फिर मटेरियली रिनाउंस्ड, है ना. तो जब वो प्रभुपाद जी की सेवा में आए, है ना, टेंपल में आए, तो उनके पास जो टैक्सी चलाई थी, कैब चलाई थी, उससे कुछ पैसे इकट्ठे हुए थे, है ना, $5,000. तो उन्होंने प्रभुपाद जी को दे दिया, जो भी था $5,000 प्रभुपाद को दे दिया. और प्रभुपाद लिखते हैं, एक जगह प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन है, भक्ति रसामृत सिंधु, उसका प्रीफेस है, लिख रहे हैं. द नेक्टर ऑफ डिवोशन इज स्पेसिफिकली प्रेजेंटेड फॉर पर्संस हु आर नाउ एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट. आई बेग टू ऑफर माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड डिसाइपल्स हु आर हेल्पिंग मी टू पुश फॉरवर्ड द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इन द वेस्टर्न कंट्रीज. एंड आई बेग टू एक्नोलेज विथ थैंक्स द कंट्रीब्यूशन मेड बाई माई बिलव्ड डिसाइपल श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी. तो प्रभुपाद ने एक्नोलेज किया उनको, है ना, प्रभुपाद उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी हैं. मतलब प्रभुपाद की जो बुक्स, जो 10,000 साल तक लॉ बुक्स हैं, उसमें प्रभुपाद अपने शिष्य का नाम लिख रहे हैं. आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका सेक्रीफाइस है, कितना का सरेंडर है अपने गुरु के प्रति, कि गुरु थैंक्स कर रहे हैं शिष्य को, है ना. I beg to acknowledge and thanks with contribution made by my beloved disciple Sriman Jayanand Brahmachari. तो उनके पास जो भी लक्ष्मी था वो दे दिया. और सैन फ्रांसिस्को मंदिर था, उसको फंड भी नहीं आ रहे थे क्योंकि उस समय फंड इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू नहीं हुआ था. उससे कुछ समय के बाद पुस्तक वितरण चालू हुआ. तो उससे क्या करते थे, रात में कैब चलाते थे, उससे जो भी पैसा आता था, और दिन में मंदिर की सेवा करते थे और प्रभुपाद जी को पूरा लक्ष्मी दे देते थे, है ना. तो ये वास्तव में सन्यासी है ना, इसको बोलते सन्यास. सन्यास मतलब सत न्यास. सत मतलब परम सत्य, न्यास मतलब पूरा दे देना, परम सत्य को अपने आप को पूरा नेछावर कर देना. तो वो सन्यासी है ना, ड्राइविंग कर रहे हैं रात में और आके सुबह आके मंदिर की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को सब कुछ दे देते हैं, है ना. प्राणे अर्थे धिया वाचा, सब कुछ प्रभुपाद जी को दे दिया, है ना. 12-14 घंटे कार्य करते थे और अंतिम समय में भी जो उनके घर से पैसा आता था उनके ट्रीटमेंट, उनको क्या हो गया था, ब्लड कैंसर हो गया था, ल्यूकीमिया, है ना. तो 1976-77 के समय तो उनके घर वाले कुछ पैसा भेजते थे उनके इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए. तो पैसा क्या करते थे, प्रभुपाद जी को रथ यात्रा में दे देते थे, अपना इलाज ही नहीं कराते थे उससे, है ना. और जो भी पैसा होता था उनको खर्च करने के लिए दिया जाता था, उसको बहुत ही ध्यान से खर्च करते थे क्योंकि प्रभुपाद जी का लक्ष्मी है, एक कृष्ण का लक्ष्मी है, ऐसे नहीं कैसे भी खर्च कर दिया, है ना. तो जब वो ऐसे अगरबत्ती बेचने आते थे और कहीं सोना होता था, है ना, किसी दूसरे शहर में गए तो वो कुछ होटल या मोटल वगैरह बुक नहीं करते थे, वो बेंच पे सो जाते थे. ऐसे पार्क की बेंच होती थी वहाँ पे सो जाते थे, और वहाँ पर ऐसे पब्लिक बाथरूम है या टॉयलेट से उसको यूज़ करते थे, तैयार हुए और फिर अगरबत्ती बेचने चले गए. क्योंकि कहीं रुकेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, और पैसा किसका है, कृष्ण का है, प्रभुपाद जी का है. तो कोई फैसिलिटी यूज नहीं करते थे, ऐसे पार्क में गए वहाँ जाके सो गए, है ना. तो इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ. हम पढ़ते हैं ना भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ कौन होता है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताना है कि इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, कि गुरु की सेवा में पूरी तरह से फिक्स्ड, है ना. और जब भी कुछ खरीदते थे पैसे से तो बहुत ही सोच समझ के खरीदते थे कि जो मैं जितना लक्ष्मी दे रहा हूँ उतना ही क्वालिटी का मुझे वस्तु मिल रहा है कि नहीं. सेवा के लिए कुछ खरीदना है तो ऐसा नहीं कि कोई चीट कर दे, है ना. कुछ भी खरीदने का है तो बहुत सोच समझ, ऐसा नहीं कि पैसा है बस दान का पैसा है कुछ भी खरीद लिया, बहुत ही सोच समझ के क्वालिटी से, कोई चीट तो नहीं कर रहा है, कुछ मिलावट तो नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं दे रहा है, तो उसमें बहुत ध्यान रखते थे. फिर अंतिम समय में जब उनकी जो शरीर है बाहरी तौर से बहुत ही वीक हो गया, है ना, ब्लड कैंसर हो गया तो बहुत ही कमजोर हो जाता है शरीर, है ना. तो उस समय में भी बिस्तर पे लेटे लेटे बहुत सारे भक्त आते थे और उनको बताते थे कि इस तरह से रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करो, इस तरह से आपको कार्ड बनाना है, इस तरह से परमिशन लेना है, ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन ये सब करना है. तो उनको इनकरेज करते थे, है ना. और फिर जयानंद द किंग ऑफ रथयात्रा, तो उनको मिस्टर रथयात्रा बोलते हैं. तो शिल प्रभुपाद ने जो रथयात्रा चालू किया वेस्ट में उसमें वो इंस्ट्रूमेंट बने, है ना. तो सब कुछ रथयात्रा में जीरो से लेके ऊपर तक सब कुछ वो ही देखते थे, मतलब सबको नियुक्त करते थे और पर्सन जहाँ भी प्रॉब्लम होता था पर्सनली वहाँ जाते थे, है ना. ऐसे रथ कार्ड बनाना, रथ बनाना, है ना. अभी जगन्नाथपुरी हम गए थे पिछले साल, है ना, तो रथ यात्रा से कुछ समय पहले गए थे तो हमने देखा था वहाँ पर कितने बड़े बड़े वो पेड़ रखे हुए हैं, लकड़ी रखे हुए हैं, इतने सारे परिवार, वो जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी उनका काम ही यही है, कोई रथ बना रहा है, कोई उसका प्लेटफॉर्म बना रहा है, कोई उसकी कैनोपी बना रहा है. तो सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, इन्विटेशन देने जाना, गेस्ट को रिसीव करना, कुकिंग देखना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सब कुछ वो करते थे, है ना. और रथ यात्रा जब होती थी उसके कुछ दिनों से वो मुश्किल से 2 या 3 घंटे सोते थे, बस 2-3 घंटे सोते थे, है ना. तो इसको बोलते हैं देहात बुद्धि से निकलना, है ना, शरीर के स्तर से निकलना कि बस 2-3 घंटे सो रहे हैं, है ना. और जो रथयात्रा में सेवा करते थे उनके लिए बाद में वो केक बनाते थे और सबको केक खिलाते थे. हम लोग कानपुर गए थे ना, कौन कौन गया था कान पर आप लोग कुछ? तो हमने सेवा किया था, कर सेवा, उसके बाद वो कुछ स्वीट लेके आए थे सबको देने के लिए, है ना। तो ऐसे ही आदान प्रदान होता है, ददाति प्रतिग्रहाति भुंगते भोजते चैव, है ना, गुह्यम आख्याति प्रचिति षड्विध प्रीति लक्षणम। तो ये छह प्रीति के लक्षण है भक्तों के बीच में। डीलिंग्स कैसे होती, छह तरह से होती है ना, प्रसाद देना, प्रसाद एक्सेप्ट करना, है ना। तो वैसे रथ यात्रा हुआ, सबके लिए केक बनाया और सबको खिलाया, है ना। फिर मिस्टिक ऑपुलेंस, उनमें कुछ मिस्टिक पावर थी, है ना। मिस्टिक पावर कैसी थी, जैसे भक्ति के सामने सुंदर बताया गया है कि भक्ति क्या है, एक रानी की तरह है, और जो योगिक सिद्धियां वो कैसे हैं, उनकी दासी की तरह। तो जहां जहां रानी चलती है वहां वहां उसके पीछे दासियां आती, तो जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर योगिक सिद्धियां भी आने लगती हैं। तो उनकी एक योगिक सिद्धि क्या थी, वो ये कि रथ यात्रा के समय कभी कभी सोते ही नहीं थे, वो सो ही नहीं रहे, ये योगिक सिद्धि है। लोग योगिक सिद्धि क्या समझते हैं, हवा में उड़ना, पानी पे चलना, ये योगिक सिद्धि नहीं है। भक्तों को कौन सी मिस्टिक पावर मिलती है, जो उनको भक्ति करने में हेल्प करे, है ना। तो वो और लगातार वो सेवक किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहते थे सबसे ज्यादा, और बाकी लोगों को उत्साह देना पूरा, है ना। और उनका एक और क्या था मिस्टिक पावर, कि बाल्टी भर के अगर हलवा है तो पूरी बाल्टी खा सकते हैं, इतना हलवा खा सकते हैं। अगर बाल्टी भर के समोसे आए हैं, बाल्टी भर के पनीर आया है, तो पूरा अकेले खा सकते हैं। तो ये भी मिस्टिक ओपिनियंस है। ईट लाइक एलिफेंट एंड सर्व लाइक एलिफेंट। अगर हाथी की तरह खा रहे हैं तो हाथी की तरह सेवा भी करना, है ना। और अंतिम समय में जो हॉस्पिटल में थे, तो उनको इंट्रावीनस है ना, ब्लड में दिया था ना, खाना दिया था, ग्लूकोज के बोतल चढ़ाई जाती, उस समय भी बाल्टी भर के भक्त लोग समोसे या हलवा लेके आते थे, तो उसको खाते थे, है ना। लेकिन वो सेवा भी बहुत करते थे, और वो इतनी सेवा करते थे कि भागवतम में क्लास में क्या होता था, नींद आती थी, सो गए, लेकिन भागवतम क्लास के बाद उनसे पूछते थे कि क्या बताया, तो वो श्लोक कोट करके बताते थे कि भागवतम क्लास में ये बताया गया। यहां भी कई लोग लेक्चर हो चालू होते ही सो जाते हैं ना, लेकिन उनका मिस्टेक पावर क्या था कि पूरा बताते थे कि ये भागवतम क्लास में ये बताया गया, और श्लोक भी कोट करते थे, है ना। तो इस तरह से मिस्टिक पावर थी उनमें। फिर प्रभुपाद जी के साथ संबंध, है ना। तो प्रभुपाद जी की वो जो वाणी सेवा है उसके लिए बहुत ही सतर्क रहते थे। वपु सेवा के लिए आगे नहीं जाते थे, बाकी भक्त आगे रहते थे। वपु सेवा करना मतलब ऐसे प्रभुपाद जी के बहुत नज़दीक हैं, या रूम क्लीन कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, है ना, वो भी आवश्यक है, लेकिन उनका जो फोकस था वो किस पे था, वाणी सेवा पर। और कभी कभी प्रभुपाद स्वयं बुलाते थे उनको कि वो जयानंद को बुला के लाओ, तो जयानंद बोल तो कचरा साफ कर रहे हैं, मंदिर साफ कर रहे हैं, तो बोलते मैं प्रभुपाद से मिलने आऊँ, कपड़े मेरे गंदे हैं, मैं प्रभुपाद जी के पास नहीं जा सकता, है ना। तो क्योंकि वो इस सबको आतुरता है ना, प्रभुपाद आए हैं तो मिलेंगे, लेकिन वो पीछे रह के सेवा करते हैं। कई लोग होते हैं पीछे रह के सो जाते हैं, सोना नहीं है, बोलते हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन पीछे रह के सेवा करते रहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी से ऐसे मिलने नहीं आते थे, लेकिन प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको वो हमेशा फॉलो करते थे। तो वाणी सेवा, वाणी और बपू सेवा। फिर प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य हैं जिनका नाम है रामेश्वर, उनको पत्र लिखा, जयानंद डेथ इज ग्लोरियस, इट इज वेरी गुड दैट ही इज स्टेटेड व्हाट इज द यूज ऑफ सच ए यूजलेस बॉडी, बेटर टू गिव इट अप, है ना। तो जयानंद को अंतिम समय में ऐसा बोलते थे कि ये शरीर को रखने का क्या उद्देश्य है ना, ये पूरा कैंसर हो गया है, सब कोई यूज नहीं, अच्छा है कि इसको त्याग दूं। तो प्रभुपाद बोल रहे कि यस, अच्छा है कि वो ऐसा बोलते, ही हैज लेफ्ट हिज बॉडी वेरी वंडरफुली, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया, एंड ही हैज बीन ट्रांसफर टू वैकुंठ, अब कहाँ गए हैं, मतलब प्रभुपाद ने पक्का कर दिया, ही हैज बीन ट्रांसफर टू वैकुंठ। आई हैव ऑलरेडी सेंट ए कॉन्डोलेंसेंस लेटर फॉर पब्लिकेशन इन बैक टू गॉड हेड, एवरी वन शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ जयानंद। तो मैंने एक पत्र जो है भगवत दर्शन में भेज दिया है, और हर किसी को जयानंद प्रभु का जो उदाहरण है उसको फॉलो करना चाहिए। आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैड सच ए नाइस डिसाइपल, कि मुझे बहुत ही गर्व है कि मेरा इतना अच्छा शिष्य था। तो प्राउड की बात हो रही थी ना उस दिन, एक दिन तो प्रभुपाद बोले कि आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैड सच ए नाइस डिसाइपल। तो गुरु को गर्व है कि मेरा इतना अच्छा शिष्य था, है ना। इफ पॉसिबल जयानंद पिक्चर शुड बी हंग इन द रथ ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड इन ऑल अवर टेम्पल्स ए डे मे बी सेट असाइड फॉर होल्डिंग ए फेस्टिवल इन हिज ऑनर जस्ट एज वी डू ऑन द डिसअपीयरेंस डे ऑफ अवर ग्रेट वैष्णव, है ना। तो जो वैष्णव कैलेंडर है, वैष्णव कैलेंडर के अंदर आप देखेंगे उसमें लिखा है डिसअपीयरेंस डे ऑफ जयानंद प्रभु, है ना। और जो रथ यात्रा है तो जगन्नाथ जी का जो रथ है उसके साइड में जयानंद प्रभु का जो पिक्चर है वो आप उसको ऐसे टांगिए, है ना। तो ये और जयानंद प्रभु शुद्ध भक्त जो हैं अपनी इच्छा से शरीर त्यागते हैं, है ना। एक ऐसे शिष्य थे रामानुजाचार्य के, उनके शिष्य थे, तो उनसे पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा है। तो बोले कि मैं अपने गुरु से पहले मेरी मृत्यु हो जाए। तो बोले कि ये कैसी इच्छा है कि गुरु से पहले मृत्यु हो जाए। तो बोले गुरु जब वैकुंठ आएंगे तो उनके स्वागत के लिए कोई वहां होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाए, वहां जाके उनके सब तैयारी कर, है ना। तो जयानंद प्रभु भी, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं वैकुंठ नहीं जाऊं, भगवत धाम नहीं जाऊं, मैं दोबारा प्रभुपाद की मूवमेंट में वापस आऊं और फिर से प्रभुपाद की सेवा करूं, है ना। चक्षु धाम दिलो जई जन्म जन्म प्रभु से, है ना, कि जन्म जन्मांतर तो मेरे वो प्रभु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं। और प्रभुपाद ने भी कन्फर्म किया कि वो वैकुंठ गए। फिर अंतिम जो पत्र है प्रभुपाद जी का, उसको और हम पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद ने 5 मई को लिखा, है ना। द फॉलोइंग लेटर डेटेड May 5 अराइव्ड फ्रॉम श्रील प्रभुपाद जस्ट बिफोर ही वेंट टू प्रेस, है ना। तो जयानंद प्रभु को लिखा था, और उनका जो तिरोभाव हुआ 1 मई को हुआ, 1st of May 1977, है ना। अब 5 मई को ये लेटर आया, माय डियर जयानंद, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स, आई एम फीलिंग वेरी इंटेंसली योर सेपरेशन, है ना, कि मेरा आशीर्वाद स्वीकार कीजिए और मैं आपसे बहुत ही तीव्र विरह महसूस कर रहा हूँ। इन 1967 यू ज्वाइंड मी इन सैन फ्रांसिस्को, यू वेर ड्राइविंग माय कार एंड चैंटिंग हरे कृष्णा, You were the first man to give me some contribution, $5,000 for printing my Bhagavad Gita, है ना। क्या आप मेरी कार चलाते थे, हरे कृष्ण जप करते थे, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवद गीता की छपाई के लिए $5,000 दिए। After that, you have rendered very favorable service to Krishna in different ways, है ना। इसके बाद आपने बहुत सारी अलग अलग सेवाएं की, है ना। I so hope that at the time of your death, You were remembering Krishna and as such you have been promoted to the eternal association of Krishna. और मुझे आशा है कि मृत्यु के समय आप कृष्ण का स्मरण कर रहे थे और भगवान के जो नित्य संग वहां पर पहुंच गए। फिर प्रभुपाद प्रिंसिपल समझा रहे हैं कि अगर ऐसा है कि आपकी कुछ इच्छा रह गई थी तो आप स्वर्ग जाएंगे और वहां से फिर कुछ सालों के बाद फिर आध्यात्मिक जगत चले जाएंगे। अगर आध्यात्मिक जगत नहीं गए तो उसके बाद आप यहां पर आएंगे, कुछ योगी के परिवार में या ब्राह्मण के परिवार में या धनी परिवार में आपका जन्म होगा और फिर से आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव करेंगे। लेकिन क्योंकि आपका जीवन ऐसा था और मृत्यु के समय आप हरे कृष्ण कीर्तन सुन रहे थे, इसलिए आई एम श्योर, है ना, मुझे विश्वास है कि आप जो वैकुंठ है कृष्ण लोग वहाँ पर चले गए, है ना। कृष्णा हैज़ डन ए ग्रेट फेवर टू यू नॉट टू कंटिन्यू योर डिजीज बॉडी, कृष्णा आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि आपको जो शरीर बीमार था वो अभी उसको आपको कंटिन्यू नहीं करना पड़ रहा है एंड हैज गिवन ए सुटेबल प्लेस फॉर योर सर्विस, और आपको बहुत ही एक संरक्षित सही जगह उनको प्रदान किए। थैंक यू वेरी मच, योर एवर वेल विशर एसी भक्तिवेदांत स्वामी। तो उन्होंने इस तरह से पत्र लिया। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय आनंद प्रभु की जय।